आदरणीय डॉक्टर हुकुमचंद जी भारल के समय सार गाथा 19 पर प्रवचन सुनिए।
नमः समय साराय और क्या चकार से चित्त भावाय भावाय सरल भावन।
आचार्य कुंद देव ने 2000 वर्ष पहले इसे इसी पवित्र भारत भूमि पर बनाया, इसकी 19वीं गाथा से आरंभ करना है। मैं ऐसी गाथाएं लेने की कोशिश कर रहा हूं जो कोई नहीं लेता है, क्योंकि 6, 7, 11, 14, 73, 38, 144 ये तो सब लेते ही हैं। फिर बाकी की गाथाएं तो बिना ही बोले ही रह जाएंगी ना, उनका क्या होगा। ऐसे विचार करके भोपाल शिविर में पहली गाथा से 18वीं गाथा तक व्याख्यान किए थे, 36 व्याख्यान हुए थे वहाँ 18 गाथाओं पर, और अब 19वीं गाथा से यहाँ आरंभ करते हैं। वो कोशिश करेंगे 31 तक पहुँचने की, 31, 32, 33 तक, और जहाँ तक भी पहुँचेंगे वो देखेंगे। सिलेक्टेड गाथाओं के प्रवचन सुनने का अलग आनंद है, और क्रम से एक विषय वस्तु पर विचार करने का अलग, दोनों का टेस्ट अलग अलग है। आपके पास यदि समय सार हो तो आप पेज नंबर 49 पर जो 19वीं गाथा है, उस गाथा के ऊपर टीका है। वो वास्तव में ये टीका 18वीं गाथा की नहीं है, 19वीं गाथा की उत्थानिका है, कलश के बाद की टीका। जो उत्थानी का अलग छपी है ना, उससे पहले जो ननु है ना ऊपर, वो भी इसी की उत्थानी का है। उस संबंध को जोड़ने वाली है कि ननु ज्ञान तादात्म त्वात आत्मा ज्ञानम नित्यम उपास्त एव कुतः तत् उपास्तत्वेन अनुशास्ता इति चेत् तन्नः यतो न खलु आत्मा ज्ञानम तादमात्मे क्षणमपि ज्ञानम उपास्ते स्वयं बुद्ध बोधित बुद्धत्व कारणत्व पूर्वकत्वेन ज्ञानस्य उत्पत्ते तरहि तत्कारणात् पूर्वम अज्ञानम एव आत्मा नित्यमेव अप्रतिबुद्धत्वात् एवं एतत्। ये जो टीका है ये 19वीं गाथा की उत्थानिका है। इसमें ये कहा गया है कि आप दो दो बातें एक साथ कहते हैं। शिष्य का प्रश्न है कि ज्ञान ही आत्मा है और अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आवाल गोपाल सबके अनुभव में नित्य आ रहा है। एक तरफ तो एक कहते हो और दूसरी तरफ कहते हो कि आत्मार्थियों को आत्मा की उपासना करनी चाहिए। तो उपासना कर ही रहा है, अनुभव में आ ही रहा है, फिर अनुभव में करना चाहिए। दो दो बातें एक साथ कैसे कहते हो? यदि उपासना यदि अनुभव में आ रहा है तो आत्मा का अनुभव करना चाहिए, इसका क्या मतलब है? और यदि अनुभव करना चाहिए तो इसका साफ अर्थ है कि आत्मा अनुभव में नहीं आ रहा है। तो हिंदी पढ़ के बताता हूं तो आपको ख्याल में आएगा। अब कोई तर्क करे कि आत्मा तो ज्ञान के साथ तादात्म स्वरूप है, अलग नहीं है, इसलिए वह ज्ञान का नित्य सेवन करता है, तब फिर उसे ज्ञान की उपासना करने की शिक्षा क्यों दी जाती है? ये उपदेश क्यों दिया जाता है कि तुम ज्ञान की उपासना करो, ज्ञान की उपासना करो? उसका समाधान यह है कि ऐसा नहीं है। यद्यपि आत्मा जो ज्ञान के साथ तादात्म स्वरूप से है, तथापि वह एक क्षण मात्र भी ज्ञान का सेवन नहीं करता। ये जैन दर्शन का स्यादवाद है अथवा विरोधाभास है। दुनिया की दृष्टि में विरोधाभास है और जैन धर्म की दृष्टि में स्यादवाद है, क्योंकि स्वयं बुद्धत्व और बोधित बुद्धत्व इन कारण पूर्वक ज्ञान की उत्पत्ति होती है। देखो हेतु क्या दिया है, सो काल लब्धि आए तब स्वयं ही जान ले, अथवा कोई उपदेश देना मिले तब जाने, देने वाला मिले तब जाने। जैसे सोया हुआ पुरुष या तो स्वयं ही जाग जाए अथवा कोई जगाए तब जागे। यहाँ पुनः प्रश्न होता है कि यदि ऐसा है तो जानने के कारण से पूर्व क्या आत्मा अज्ञानी ही है, क्योंकि उसे सदा अप्रतिबुद्धत्व है। उसका उत्तर ऐसा ही है, क्योंकि वह अज्ञानी है। ये उत्थानिका है। अब यहाँ प्रश्न पूछते हैं कि आत्मा कितने समय तक अप्रतिबुद्ध रहता है, वह कहो, उसके उत्तर स्वरूप गाथा कही जाएगी। यानी समय सार में ऐसे विरोधाभासी प्रश्न निरंतर मिलेंगे कि यहाँ तो हम ये कहते हैं कि आत्मा ज्ञान स्वभाव ये भगवान है। अपन बोलते हैं ना, आत्मा स्वयं भगवान है, और जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष मझार है। और यहाँ ये कहते हैं कि दीन है, हीन है, रंक है, भिखारी है, अनादिकाल से नर निगोद में डंडे खा रहा है, तो कितना अनंत दुख भोग रहा है। एक तरफ कहते हैं सुख का भंडार है, आनंद का रसकंद है, ज्ञान का घन पिंड है, और दूसरे कहते सुख रंच मात्र भी नहीं है। हमने छान कर देखा, देखो है ना, देखो सब संसार कहूं न सुख संसार में, सब जग देखो छान। यहाँ तो कहते हैं ये सब आत्मा आनंद के ही बने हुए हैं, पर ये सब आत्मा दिख रहे हैं। पर आत्मा कहता है मैंने सारी जग को छान के देख लिया और कहीं सुख ही नहीं है। तो दो दो बातें विरोधाभास जैसी लगती है कि नहीं है? अकेली वो ही बातें नहीं है कि आत्मा नित्य और अनित्य है, नित्य और अनित्य विरोधाभास है, भिन्न और अभिन्न है। लेकिन ये भी तो है ना कि हम आत्मा भगवान है और भिखारी है, आत्मा आनंद का कंद है और आत्मा को रंज मात्र भी सुख नहीं है। ये भी तो विरोधी भास है क्या नहीं है? तो अब 18वीं गाथा में कहा था ना, आबाल गोपाल के सब भगवान आत्मा नित्य अनुभव में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है, और आज तक इसने आत्मा का अनुभव नहीं किया। ये क्या जादू है, इसके पीछे क्या रहस्य है? तो मैं तो अभी चर्चा करूंगा, लेकिन आचार्य ने क्या कहा ना कि भैया अनुभव माने आत्मज्ञान तो स्वयं बोधित या बोधित बोधित्व पूर्वक होता है। ये बहुत मर्म की बात है, पहले मैं इसी को विस्तार देता हूँ। सम्यक दर्शन की प्राप्ति माने सम्यक ज्ञान की प्राप्ति माने आत्मा का अनुभव या तो निसर्गज होगा या अधिगमज होगा। ये ऐसा बात कह रहे हैं कि ज्ञान स्वभावी आत्मा तो निगोद से लेकर आज तक है ना, तो हम जन्म से तब से ही हम ज्ञान के तो घन ज्ञान के घन पिंड हैं क्या नहीं, आनंद के कण तो हम जन्म से ही हैं। तो अभी शास्त्र में लिखा है कि सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति 8 वर्ष की उम्र के पहले नहीं होती। अब जरा समझना, पंचम काल में इस क्षेत्र काल में कोई सम्यक दर्शन लेके पैदा नहीं होता। ये शास्त्र की बात है, मेरी तरफ से बात नहीं है। माँ के पेट में सम्मत कभी इस दृढ़ क्षेत्र काल भाव में नहीं होता। तीर्थंकर तो होते हैं सम्मत दृष्टि, और माँ के पेट में भी सम्मत दर्शन रहता है। इस सर्वथा के निषेध की बात नहीं समझना। और 8 वर्ष की उम्र के पहले होता नहीं है, और 8 वर्ष की उम्र के बाद की बात तो लगभग हमें याद है ना कोमलचंद जी, थोड़ी थोड़ी। तो उसके बाद तुमने आत्मज्ञान को जिस विधि से शास्त्र में कहा है उस विधि से तुमने उसके उत्पन्न किया है, तुम्हें उत्पन्न हुआ है ना, सिर्फ किया की भाषा नहीं करना हो तो, और नहीं हुआ है तो गारंटी है कि नहीं है। तो वो ये कह रहे हैं कि या तो स्वयं होता है या बोधित बुद्धत्व होता है। यदि तुमने किया है तो स्वयं बुद्धत्व से हुआ कि बोधित बुद्धत्व से हुआ, ये बताओ। यानी कहने का अर्थ ये है कि वो करण लब्धि पूर्वक होता है, और करण लब्धि देशना लब्धि पूर्वक होती है। बोधित बुद्धत्व का लिखा ना, उसका मतलब देशना लब्धि पूर्वक होता है। इसमें तो भाषा ऐसी है कि या तो स्वयं हुआ हो और या किसी ने तुम्हें समझाया हो इसलिए आया है। लोग में ऐसा पूछते हैं कि हमारे यहाँ विद्यालय में भर्ती होने के लिए विद्यार्थी आते हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि भैया तुम यहाँ क्यों आए, कैसे आए? तो वो कहते हैं नहीं, घबराना नहीं, ये बताओ कि तुमको किसी ने प्रेरणा दी, माँ बाप ने प्रेरणा दी, कि तुम्हारे अंदर से ही प्रेरणा आई। इन्हीं ये पूछकर हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि लड़के की स्वयं की रुचि है कि माँ बाप की रुचि है, उससे कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेते हैं कि स्वयं की रुचि हो तो भर्ती कर ले, माँ बाप की इसने भेजा हो तो नहीं करें। फिर भी जानने के लिए कुछ लोग ऐसे होते हैं स्वयं की रुचि से आते हैं और माँ बाप विरोध करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं माँ बाप की रुचि से आते हैं, वे भागने को फिरते हैं और माँ बाप जबरदस्ती घेर घेर के हम भेजना चाहते हैं। हम तो इसलिए जानना चाहते हैं कि इसको रखेंगे तो भविष्य में इसके साथ कैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। ये भागेगा, क्या ख्याल में आए ना, कि माँ बाप की रुचि से आया होगा तब तो कहेगा नहीं हमें जानते हैं, भागेगा तो उस तरह से समझना पड़ेगा उस बात को रखने के लिए। और यदि अपने रुचि से आया हो और माँ बाप तो विरोध ही कर रहे हो तो हम कहें माँ बाप से लिखा के लाओ और माँ बाप की ये कहो, तो बाप तो इसलिए बैठा ही, अगर भर्ती नहीं हुए तो अच्छा रहे, भर्ती नहीं होगा ना तो लौट के मेरे घर आ जाए। तो दोनों हिसाब से जैसे वहां भी विचार करना पड़ता कि तुम स्वयं बुद्धत्व हो गए बोधित बुद्धत्व है ना, हर मामले में क्या है इस बात पे अलग अलग विचार करना पड़ता है ना। फिर इसे उसे भविष्य में कैसे पीट करके उसको सही रास्ते पे कैसे लाया जाए, ख्याल में आया ना। और कहां मेहनत करने की जरूरत है इस पर और कहां नहीं है, और इस पर मेहनत करना बेकार है ये बात तो समझनी पड़ती है ना। तो यहाँ आचार्य कहते हैं कि तुम्हें हो गया है ना, तुम्हें हमें आत्मज्ञान हो गया है तो स्वयं बुद्धत्व से हुआ है कि बोधित बुद्धत्व से हुआ है। तो इसमें ऐसा लगता है कि जैसे दो में से कोई एक से होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। पहली बात हम जब ये पूछते हैं तो अपनी रुचि से आए कि माँ बाप की रुचि से, ऐसा लगता है कि दो में से, उनमें थोड़ी थोड़ी तो दोनों की होती है, क्योंकि यदि माँ बाप की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो तो ये आ ही नहीं सकता था, और स्वयं की भी बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो तो माँ बाप भी जबरदस्ती नहीं ला सकते थे। वहां से यहां तक ले आए हैं और इंटरव्यू देने के लिए आ गया है, फॉर्म भर दिया है और माँ बाप ने साइन कर दिए हैं, तो थोड़ी थोड़ी तो दोनों की होगी, सवाल तो कम और ज्यादा का है। ऐसे किसी को भी आत्मदर्शन की प्राप्ति, सम्मा दर्शन की प्राप्ति न अकेले स्वयं बुद्धत्व से होती है न बोधित बुद्धत्व से होती है, माने दोनों ही अनिवार्य है। देशना लब्धि और करण लब्धि, करण लब्धि माने स्वयं बुद्धत्व और देशना लब्धि माने बोधित बुद्धत्व। लेकिन जो ऐसे भेद क्यों दिए डाले देवीलाल जी साहब, भेद इसलिए डाले कि किसी को इसी भव में उपदेश मिला हो और किसी को पहले भव में मिला हो, तो पहले भव को हम यहाँ स्वयं बुद्धत्व कह देते हैं, क्या क्योंकि अभी कोई गुरु दिखाई नहीं देता है। क्यों जी, स्वामी जी को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई तो कैसे हुई, उनका गुरु कौन है, पूछते कि नहीं पूछते, कि कोई गुरु नहीं दिखाई देता है, तो हम कहेंगे अपने आप ही हुई, यही बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, पहले भव में उन्हें श्रीमंदर परमात्मा से जो और किसी से भी सुनने को जो मिला था वो इधर काम आ गया, तो उसको काम आने के लिए कोई जाति स्मरण की भी जरूरत नहीं है, क्यों तो गुरुदेव को तो जाति स्मरण नहीं था ना, दूसरे को था, हो बेंसरी को था मान लो, लेकिन गुरुदेव को तो नहीं था ना, और उनको इस भव में सम्मा की प्राप्ति हो गई कि नहीं हो गई, बोलो पवन, वैसे ही मतलब जाते मतलब उस भव की याद आ जाए, लेकिन वो तत्व ज्ञान ही याद आ जाए, कदाचित ऐसा याद नहीं आवे कि ये बात मुझे किसने बताई थी, लेकिन बात याद आ जाए उससे भी हो जाता है। प्रदीप ऐसा अपने साथ नहीं होता है कि ये बात अपन को याद रहती है लेकिन ये किसने कही थी ये याद नहीं रहता है, और महत्वपूर्ण तो बात है किसने कही थी ये थोड़ी महत्वपूर्ण है, याद रह जाए तो बहुत बढ़िया है, तो जाते समय तो ये बात है किसने कही थी, वो मूल तत्व ज्ञान की बात तो जो बात की बात है वो बात हमारे ख्याल में आ जाए, त्रिकाली तो भगवान आत्मा ख्याल में आ जाए, और ये नहीं आए ख्याल में गए किसने समझाया था तो चलेगा काम, सम्मा दर्शन हो जाएगा, उसको बोलते स्वयं बुद्धत्व। हमारे तीर्थंकरों को स्वयं बोध कहते हैं, स्वयं बोध स्वयंभू भगवान, शंभू स्त्रोत्र में आता कि नहीं आता, स्वयं भवाइन, स्वयं भव का मतलब ये होता है, क्योंकि उनको पहले भव में तो उन्हें भी देश में लब्धि मिली थी ना, महावीर को भी शेर की पर्याय में मुनिराजों ने समझाया था ना, लेकिन महावीर की पर्याय में नहीं हुई, ख्याल में है ना। तो वो दोनों की अनिवार्यता है, लेकिन एक अकेले भव की ही बात नहीं है आदमी जी, इस भव में भी ऐसा हो सकता है कि मेरे को 25 वर्ष पहले गुरुदेव से एक बात सुनने को मिली और वो मेरे अवग्रह इहा अवाय धारणा तक पहुंच गई, ध्यान से सुनना, अब भाई उसके आगे काम नहीं बढ़ा और मैं धंधे पानी में लग गया, गुरुदेव का तो हो गया स्वर्गवास, और 20 साल तक मैं बिल्कुल धंधे में पानी में गुंचा बिल्कुल फंसा रहा। 20 साल बाद मेरी काललब्धि पकी और मेरे धारणा में से स्मृति में वो बात आई और मुझे समय से ही प्राप्ति हुआ। तो उस वक्त तो साक्षात नहीं देखेगा ना कोई गुरु, क्योंकि यदि हम उस वक्त उसको माने बोधित विद्वत्व कहते बोध गुरुदेव ने बताया था 25 साल पहले वो काम आ गया तो दुनिया नहीं मानेगी, क्योंकि सामने तो यदि उससे होता था तो उसी दिन हो जाता, तो यदि उससे नहीं हुआ आज हुआ तो स्वयं से हुआ, इसमें उपादान की मुख्यता हो गई ना। एकदम दिखने में भी उपादान की मुख्यता तो सदा ही है, लेकिन वो दिखने में भी उपादान की मुख्यता हो गई, लेकिन हमेशा उपादान मुख्य रहता है और निमित्त दिखता मुख्य है। क्या क्या ख्याल में आपके ख्याल में आ गई ना बात, एकदम सबके में आ गई होगी। उनने उपदेश दिया समझाया और उसी वक्त मेरा उपादान जगा, तो मैंने कहा महाराज मुझे दीक्षा दे दीजिए। अरे महाराज के उपदेश का कितना अच्छा असर पड़ा, तो वहां निमित्त में दिखा, काम तो उपादान नहीं किया, मुख्य तो उपादान रहा, काम होने में मुख्य तो उपादान नहीं रहा, लेकिन दिखने में निमित्त मुख्य दिखा। अब उस वक्त तो हम बिल्कुल ऐसे चुप्पी साध के बैठ गए, अब 20 साल बाद हमने कहा तो अब वो कोई कहने वाला नहीं है, तो वहां उपादान ही मुख्य दिखेगा, तो ये अपने आप हो गया। मेरे ख्याल से बहुत सरल है, और सरल करूं विनय जी, अभी एक पंडित जी ने अपील की है, अब जल्दी समझ में आएगा, पैसे वालों को पैसे की बात जल्दी समझ में आती ना। अपील की कि साहब ये अच्छा काम हो रहा है, इसमें आप एक पैसा दीजिए। तो कुछ लोगों ने फटाफट लिखा दिया, 2 लाख रुपए लिखा दिए लोगों ने। पंडित जी हो गए कि मैं चौड़ा और बाजार सकड़ा, मेरी एक आवाज पर लाखों रुपया बरसता है। अब गया इस पंडित का मनोस्वभाव खत्म, समझ गया अब इसका कल्याण होना बहुत मुश्किल है। क्यों, 2-4 जगह ऐसा हो गया ना, तो बस समझ लेना का मरा पंडित, बस मौत आ गई। कैसी बात है। अभी ऐसा भी हुआ 4 आदमी को सुरेंद्र कुमार जी के, वो बात उपयोगिता सब समझ में आ गई उसके, सही है यहाँ पैसा देना चाहिए। पैसा तो काम को मिलता है, किसी की अपीलों से नहीं मिलता है। हम लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि तुम बड़ो करा दिया, अरे सब घर सोच के आते हैं, मुझे स्वधर्मेंद्र बनना है, मुझे माँ बाप बनना है, मुझे ईशान बनना है, मुझे कुबेर बनना है, 1 लाख तक तो मैं छोड़ूंगा नहीं पत्नी से, पर सब विचार कर करके आते हैं। तो मुझे मासिक धर्म का दिन तो नहीं है उस दिन, कोई लड़के की शादी मादी तो नहीं है, बाधा तो नहीं है, कोई ऐसे बोल देते। क्यों, बाप को बेटे से पूछना पड़ता है, बेटे को बाप से पूछना पड़ता है, तब जाकर के कुछ होता है काम। वो समझता है फटाफट 1.5 लाख उसने मेरे से ऐसे कहने से ही बोल दिया है। क्यों सबड़ा जी वो सब सोच समझ के आते हैं। हाँ इतना हो सकता है कि कोई लाख का विचार करके आ रहा हो, छाबड़ा जी के धक्का से 1,11,000 हो जाए, समझो ना, इससे ज्यादा आप धोखे में मत रहना। जमीन से कोई खड़ा नहीं होता, जो खड़ा होता है वही वो होता है, पर हम लोगों को ऐसा भ्रम खड़ा हो जाता है तो हमारे मौत के दिन आ जाते हैं। ऐसे इसमें भी होता है, अन्य से उसका उपादान तैयार हुआ तब तो वो हमारा प्रश्न सुनने आया है, हाँ पंडित जी आपने बहुत गजब की बात बताई है, मैं तो जीवन ही बदल गया है, अब हमारी मक्खनबाजी करने के लिए हमको बुद्धू बनाता है, पर हमने पंडित तोड़ा हुआ, वाह मेरे से इतने लोग बदल गए। अरे बदला नहीं होता तो यहाँ आता ही नहीं। क्या पंडित जी साहब आपको पता नहीं था 40 वर्ष से 45 वर्ष से कि कोई कांजी स्वामी है और इतने बढ़िया बढ़िया है, आप क्यों नहीं आए? जब आपका उपादान बदला तब आ गए, तो स्वामी जी से तो नहीं आए, हुकुमचंद पंडित से आ गए, ऐसा नहीं है। मैं ऐसा धोखा नहीं पालता हूँ, क्योंकि ये बीमारी है, ये तो उसकी काल लब्धि पे सब कुछ निर्भर करता है, समझ में आया ना। अरे आदिनाथ से समझ में नहीं आए और चांदीधारी मुनियों से समझ में आ जाए, वो और मारी भगवान के पोते की पर्याय में नहीं आए और शेर की पर्याय में आ जाए, कब किसके आ जाए और किससे आ जाए, इसकी कोई गारंटी है? पंडित जी आप देखो कि लंदन में एक झगड़ा हुआ, मेरा टेप हो रहा है, मैं कर रहा हूँ जानबूझ करके, कि वो मंदिर बना ना दिगंबर मंदिर, वो किसकी प्रेरणा से बना? अभी उन्होंने ऐसा कहा कि पंडित जी 10 साल से आते हैं, वो हमेशा हमें प्रेरणा करते थे, इसलिए हमने मंदिर बनाया, ऐसा बोल दिया। तो कोई कहा नहीं 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 नहीं, वो तो प्रवीण भाई आए थे लास्ट ईयर, उनकी प्रेरणा से हुआ। तो कोई ने कहा नहीं 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 नहीं, वो तो लालू भाई आए थे 15 साल पहले, तो उनकी प्रेरणा से हुआ। कि नहीं नहीं नहीं, एक शांति भाई रेवा शंकर है कोई, वो आए थे तो उनकी प्रेरणा से हुआ। तो किसकी प्रेरणा से हुआ इसका एक, तो उन्होंने कहा झगड़ा मत करो, सबकी प्रेरणा से हुआ, सबका लिख देगा, सबकी प्रेरणा। कितना ये प्रेरणा का चक्कर कितना है। लखोना का बिना उपादान से होगा, बिना किसी की प्रेरणा के हो गया, काहे को ये प्रेरणा प्रेरणा के चक्कर लगाते हो। नहीं नहीं पंडित जी, हमको तो यहाँ, हमें हिंदुस्तान का झगड़ा यहाँ नहीं लाना है, हमको तो यहाँ एकता रखनी है, हम तो सबकी प्रेरणा से हुआ। तो आप बुरा मत मान, मैंने कहा हम तो बुरा मानते नहीं, आप कहो तो हमारा भी नाम हटा दो, हमें तो नहीं चाहिए भैया हमारी प्रेरणा फेरना है, हमको नहीं चाहिए। क्या होगे क्या हो? मैंने वो जो हुआ है वास्तव में उसकी काल लब्धि आई है, देने वाले करने वाले हैं, ये करने वाले सब बात है। ऐसे होता है किसी के कहने से होता तो उस वक्त हो जाता ना। अभी क्या हुआ कि जो मैं आपसे कह रहा था ना, वो अपील की तो 2 लाख तो लिखे गए और बाकी लोगों ने चुप रहे। मैं तो आ गया कोमल सिंह जी, लेकिन अभी बोल दूंगा तो पत्नी लड़ेगी कि तुम्हें तो कुछ होश तो रहता नहीं। अरे विचार तो कर लेते, बच्चा लड़ेगा तो जरा उनसे भी बात कर लूं, हालांकि मेरी आज्ञा के बाहर नहीं है, लेकिन पहले बोल दो तो लड़ाई हो जाती है, पूछ के बोलूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? तो बेचारा चुप रहा। तो वो हमारे खाते में कम रह गए। फिर आगे कहा पंडित जी मेरे भी 2 लाख लिख लो। अरे तुम उस वक्त लिखा देते ना तो मेरे खाते में 4 लाख तो जमा हो जाते, अब ये 2 लाख मुफ्त में ही गए। क्यों क्यों उसका मतलब वो तो नहीं विचार विमर्श करके, अथवा उसकी अभी कोई हैसियत नहीं है, अभी थोड़े दिन उल्टे चल रहे हैं, ऐसा होता कि नहीं होता मणिकांत कभी कभी? मन में भाव तो बहुत आ गया लेकिन दिन तो चल रहे हैं उल्टे, तो मन में विचार तो बहुत है। फिर भाग्य में 1-2 साल बाद अच्छा एकदम मुनाफा हो गया तो वो आगे उसने लिखा दिए, तो उसमें देश न लब्धि तरीके काम कर रही है, वो बिना उसके नहीं हुआ, समझ गया ना? वो हो गया स्वयं बोधित्व और उसको बोलते हैं बोधित बोधित्व। माने जो बोध स्वयं बुद्धत्व दिखाई देता है कि अपने अंतर की प्रेरणा से मैंने ये किया, वो भी पहले कहीं कोई निमित्त की प्रेरणा होती ही है। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में ये नियम है कि देश ना लब्धि के 5 लब्धि के बिना होता नहीं है ना, तो कभी ना कभी उसकी देश ना लब्धि होना ही चाहिए। तो फिर अथवा में क्यों लिखा कि ये तो मुख्यता किसकी, इस समय किसकी मुखता दिखाई दे रही है, इसलिए कहते भैया सम्यक दर्शन की उत्पत्ति तो स्वयं बुद्धत्व से होती है या बोधित बुद्धत्व से होती है, और तुम कहते अनादि से ही भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, ख्याल में आया ना? तो फिर वो कैसे रहा? आत्मज्ञान तो देश न लब्धि पूर्वक होता है और करण लब्धि पूर्वक होता है। तो करण लब्धि और देश न लब्धि हुई कि नहीं हुई? कि नहीं हुई तो समझ लो अज्ञानी ही है। कैसी गजब की बात है, ज्ञान का घनपिंड अज्ञानी है। क्यों? समुद्र के बीच में मछली प्यासी है, मछली क्यों? आप जहाज में बैठे जा रहे हो और आपका पानी खत्म हो जाए तो आप भी प्यासे रहते हो ना, समुद्र के बीच में पानी के जहाज में, क्यों? समुद्र का पानी पीने के काम का थोड़ी है, वो तो डूबने के काम का है। घर में भी आप समुद्र का पानी पीते हो क्या? ये तो कुएं का गर्म करके, अब एक विधि पूर्वक है क्या? नहीं है। कैसा आप समुद्र के बीच में प्यासे मर गए तो उसमें क्या है? कोई गजब की बात थोड़ी है, तो सीधी सरल बात है। आपको साहब मैं तो प्यास में मर गया, क्या कि गया था समुद्र के अंदर में और मैं पानी लेना अपना ले जाना भूल गया, मैं क्या समझता था कि इतना समय लगेगा, अभी तो 4 घंटे लग गए, प्यासा मर गया। हम तो सुना था मछली समुद्र में प्यासी मरती है। अरे समुद्र समोषण के बीच में से भी वापस आता है, समझ में आया ना? और बाद में वही देश में काम आ जाती है। इसलिए भाई साहब जिस तत्व चर्चा को जो ऐसी बातें करते हैं ना, बेकार बेकार बेकार, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, अरे एक तत्काल फल देखने की बात मत कहो। कोई भी एक वाक्य निरर्थक नहीं जाता। गुरुदेव तो ऐसा बोलते थे, सामने जीवों के कल्याण का काल पका होगा तब हमको बोलने का विकल्प आता है। 102 डिग्री में भी बोलने का विकल्प क्यों आया? इसका मतलब सामने पात्र जीवों का काल पका है, क्योंकि निमित्त निमित्त संबंध ऐसा ही होता है। गुरुदेव के मुख से सुना होगा ना कई दफे आपने, कहने निमित्त निमित्त संबंध ऐसा होता है। अरे ये तो इस निमित्त निमित्त संबंध को तो कालिदास भी मानते हैं। कालिदास ने लिखा कि शकुंतला जंगल में ऋषि के आश्रम में थी ना, कण्व ऋषि के आश्रम में, और दुष्यंत राजा शिकार खेलने गए थे तो उन्होंने उनको देखा और देख करके उस पर मोहित हो गए। मोहित हो गए तो उन्होंने पूछा कि किसकी लड़की है, तो उन्होंने कहा कण्व ऋषि की लड़की है। तो उनके शास्त्रों में ये विधान है कि ब्राह्मण की लड़की से ब्राह्मण ही शादी कर सकता है, छत्री की लड़की से छत्री और ब्राह्मण दो जने कर सकते हैं, वैश्य की लड़की से छत्री ब्राह्मण और वैश्य तीन शादी कर सकते हैं, और शूद्र की लड़की से छत्री ब्राह्मण और वैश्य चारों और शूद्र चारों शादी कर सकते, ऐसा उनके यहाँ है। सुना कभी मनुस्मृति वगैरह में सब में लिखा है, है? आपने तो सुना होगा, ऐसा नियम है लिखा है उनके यहाँ। तो उनके मन में ये विकल्प आया कि ये तो ब्राह्मण की कन्या है और इसके ऊपर मेरा मन क्यों गया, स्थान में मेरा मन गया, मैं बहुत पापी हूँ, ब्राह्मण की कन्या पर मेरा मन नहीं जाना चाहिए था। फिर कहता कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ये कन्या ब्राह्मण की नहीं होगी, ये छत्री की ही होगी, क्योंकि महापुरुषों का मन स्थान पर नहीं जाता, ऐसा लिखा कालिदास की सूक्ति है। महापुरुषों का मन, पुण्यशालियों का मन स्थान में, या तो मेरा पुण्य क्षीण हो गया है, समझे ना, जो पुण्यशाली हैं उनका मन ऐसी चीज पे ही जाता है जो उन्हें उपलब्ध हो सके, ऐसी चीज पर मन उन नाला उन अभागों का ही जाता है कि जो उन्हें उपलब्ध होना संभव नहीं हो, और उस पर उनका मन जाए समझ लेना इसके पाप का उदय है पार्नी जी। और जिसके मिलने की संभावना हो, कोई बाधा नहीं हो, उस पर हमारा मन जाए समझ लेना इसके पुण्य का उदय है। या तो मेरा पुण्य क्षीण हो गया है, क्या पता लगाना चाहिए, तो जाके ऋषि से पूछता है, महाराज मेरे को शंका है कि ये आपकी लड़की नहीं है। क्यों क्यों राजन क्या बात करते, ऐसी बात क्यों करते हो? नहीं, क्योंकि मेरा मन इस पर चला गया, मेरा मन स्थान पर नहीं जाता, ऋषि की कन्या पर मेरा मन नहीं जाता है, नहीं जा सकता है, मैंने जीवन में ऐसा पाप नहीं किया है कि स्थान पर मेरा मन जाए। सच बताओ कि बेटा बात सच्ची है, ये तो एक छत्री की कन्या है, इस तरह मेरे घर में पल रही है और मेरे नाम से प्रसिद्ध है, मैंने कहा था ना ठीक है शादी कर सकते हो, तो आप समझ गए ना, स्थान पर नहीं जाता है उनका विकल्प, ये तो उनने ही कहा। तो ऐसे ही निमित्त निमित्त संबंध की बात हुई ना, कि मेरे उपादान में ये बात आई तो उसका जरूर ये छत्री की कन्या होनी चाहिए, तो ऐसे ही निमित्त निमित्त संबंध इसका है। किसी जीव को आत्मा के कल्याण का काल पके और उपादान की अंदर से पुरुषार्थ पूर्वक विधि पूर्वक तैयारी हो, विधि शब्द बोलते हैं उसका अर्थ पुरुषार्थ होता है, लोगों से पुरुषार्थ गायब भुगत नहीं होता, विधि पूर्वक समझे ना, जो शास्त्र में विधि बताई है उस विधि पूर्वक हो तो निमित्त तो होगा ही, और अभी नहीं मिलेगा तो चिंता मत करो, पहले मिल गया होगा और वो निमित्त काम आ जाएगा। लेकिन एक शर्त है भरदत्त जी, कि वो जो गुरु से हमने उपदेश पहले सुना हो ना, वो धारणा तक जाना चाहिए। ये आपको सीधा लिखा शास्त्र में कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन मैं सिद्ध कर सकता हूँ आगम से युक्ति से, ये आपकी भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्यों क्यों बोलो जतीश भाई, ऐसा नहीं है कि हमने ऐसा कहा और तुम्हारे ऊपर से सुन के तुम चले गए और तुम्हारे बस और आ जाएगा, वो काम नहीं आएगा आदमी जी। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा बिल्कुल आदमी जी, निर्णय हो जाना उसका नाम अवाय, और फिर उसको रट रट कर उसको मतलब धारणा में और जम जाना कि कभी भूले नहीं, उसका नाम धारणा। यहां तक पहुंच गया हो उपदेश और फिर कार्य नहीं हो पाया हो, क्लास में तो फर्स्ट क्लास पास हो गया हो लेकिन फिर वो परिणमन नहीं हो पाया हो, राग से भिन्न भगवान आत्मा समझ में तो अच्छी तरह आ गया हो तर्कों युक्तियों से, धारणा में भी बैठ गया हो लेकिन वो कोठरी में जाकर वो निहाल जी वाली कोठरी में जाकर के बैठ गए और वो अंदर सीधा ज्ञान का गेय नहीं बन पाया हो, यहां तक बात छूट गई हो, तो वो उपदेश अगले भव में भी जाकर ख्याल में आया ना, तेरे को सम्मा दर्शन की उत्पत्ति का निमित्त बन जाएगा, वह करण लब्धि अगले भव में भी हो जाएगी। इसलिए भैया देशना लब्धि का काम तो पटा लेना कम से कम इस भव में। सबसे बढ़िया बात तो ये कि सम्यक दर्शन ही लेके जाना, इस देह को छोड़ना, तो देह छोड़ने के पहले देह से भिन्न जो भगवान आत्मा है उसके दर्शन कर लेना, क्या समझ गए ना। अब इतना नहीं होवे तो क्यों, इतना नहीं होवे तो बोलो वकील साहब क्या करना, कि ये धारणा तक आ जाना तो भी तेरा काम हो जाएगा, स्वामी जी का भी हो गया, अपने गुरु का भी हो गया ना आदमी जी। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ, चाहे मेरा आप प्रेरणा समझ लो, चाहे उपदेश समझ लो, चाहे आदेश समझ लो, मेरे विद्यार्थी भी बैठे ना इसलिए, कि कभी भी विकल्प में भी
ये जो अध्यात्म की चर्चा होती है, प्रवचन होती है, क्लासें चलती हैं, इनको निरर्थक बताने का विकल्प मन में नहीं उठना चाहिए। अरे निरर्थक बताने के लिए बहुत बातें हैं विषय कसाई की, और आत्मा के अनुभव का प्रतिपादन कर लेना तो कह दो, ये भी कह दो, पढ़ते पढ़ते नहीं होगा अनुभव में, ये भी विकल्प छूट जाएगा। ये है ना प्रतिपादन का तरीका। अपने शास्त्र में क्या लिखा है मालूम? वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, और रस स्वादत सुख उपजे अनुभवता को नाम। वस्तु का विचार करते करते और विचार रुक जाए, ऐसा नहीं ये विचार हे है, ऐसा विचार करते करते विचार नहीं रुकते हैं। आत्मा शुद्ध बुद्ध निरंजन निराकार है, ऐसा सोचते सोचते वो विचार रुक जाता है और ज्ञान कायम रह जाता है। नहीं आया समझ में? और फिर कहता हूं जरा समझना प्रदीप जी, आपको ध्यान से सुनना, सभी सुनना, मतलब जैसे कोई प्रदीप जी की बात नहीं है, अंजी देवीलाल जी, जो आत्मा वो विकल्प से निर्विकल्प होगी ना, कि आत्मा शुद्ध बुद्ध है, निरंजन है, निराकार है, और ये विकल्प भी बेकार है, ऐसे ऐसे विकल्प का निषेध करके निर्विकल्प में नहीं जाएगा आत्मा। विनय जी क्या कह रहा हूं, तो क्या होगा, मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, निरंजन हूं, निराकार हूं, ऐसा विकल्प करते करते अगले क्षण में निर्विकल्प हो जाएगा। मैं शुद्ध हूं ये बात झूठी थे, अभूतार्थ थे, ऐसे इससे निर्विकल्प में नहीं जाएगा। क्या आप मेरा तर्क समझ गए कि नहीं समझ गए? क्यों भाई पीछे वाले समझे कि नहीं समझे? फिर कहता हूं, जो हमारे दिमाग में घुस गए, हे 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 हे, ये बहुत खतरनाक बात है। क्या लिखा उस बाद में जी? वस्तु विचारत ध्यावते, मैंने कई दफे व्याख्यानों में कहा है, लेकिन ऐसे डायरेक्ट आक्रमण करके नहीं कहा, लेकिन बिना झंझोड़े बिना दुनिया की समझ में नहीं आता है, इसलिए झंझोड़ के कहता हूं। आज मैंने इसकी व्याख्या पहले भी की है, भोपाल में भी की थी, कि वस्तु विचारत ध्यावते, उदाहरण दिया था कि जब कोई आदमी बेहोश होता है, करते है ना, मेरा एक अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था तो मुझे बेहोश किया गया था, तो मुझको उसका याद है, वैसे तो कभी बेहोश होने का याद नहीं है, तो वो मुंह पे वो टोपा रख देते हैं, फिर कहते हैं गिनती गिनो, गिनती गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वो क्या होता है, अपन को भी मालूम पड़ता है कि धीरे धीरे उसका फोर्स कम होने लगता है, 1 2 3 4 5 6 1, माने एकदम बंद नहीं होती है, और तो धीरे धीरे फोर्स कम होता है तो समझ, अब दवाई का असर हुआ, बेहोश होने लगा है। फिर वो कहते बोलो बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, तो फिर वो अपन सुनते हैं कि जोर से बोलने के लिए डॉक्टर साहब कह रहे हैं, तो अपन ताकत लगा के जोर से बोलते हैं, लेकिन वो जोर लगता ही नहीं है, और धीरे धीरे वो बोलना बंद हो जाता है, तो डॉक्टर समझ लेते हैं अब बेहोश हो गया, इतना मेरे को होश है अभी तक। उसको ऑपरेशन हुए तो 30 वर्ष हो गए, 1962 में हुआ था, 31 वर्ष हो गए, लेकिन अभी एकदम मुझे ख्याल है, वो मुझे इतना, तेरे मेरे पेट को चीरा तो मुझे उस चीरे का भी ख्याल है, ऐसा ऐसा लगा जैसे कि अपन ऐसी पेंसिल खींच देते हैं ना कागज पे रूल खींचने के लिए, ऐसा मुझे ख्याल है, उसके बाद मुझे कुछ ख्याल नहीं है। ऐसा ही आत्मा के अनुभव में होता है, क्या आत्मा शुद्ध बुद्ध निरंजन निराकार, जो भी विकल्प चल रहा है उसके स्वरूप के बारे में, तो वो विकल्प का जोर कम होता जाता है, और जोर कम होते होते शुद्ध बुद्ध, तो शुद्ध बुद्ध का ज्ञान रह जाता है और विकल्प खत्म हो जाता है। ये जो बेहोश में तो क्या ज्ञान ही खत्म हो जाता है, और उसमें वो विचार खत्म हो जाता है, विकल्प खत्म हो जाता है, और ज्ञान कायम रह जाता है। तो मैं शुद्ध हूं ये तो व्यवहार है और ये झूठा है, ऐसे विकल्प से फिर जो ज्ञान कायम रहेगा, मैं वो आत्मा शुद्ध आत्मा का रहेगा कि शुद्ध आत्मा नहीं है इसका रहेगा, इसलिए कौन से विकल्प का निषेध करके निर्विकल्प होगा, आपके ख्याल में आ गई? क्यों धमकराज जी, आपके में आती है ख्याल में? फिर कहता हूं ध्यान से सुनना, यानी ऐसे निषेध वाले विकल्प से नहीं होगा निर्विकल्प, क्योंकि निषेध वाले विकल्प में शुद्ध नहीं हूं, तो तुम शुद्ध नहीं हूं वाले आत्मा में तुझे लीन होना है, कि जो शुद्ध है, जो एक है, जो नित्य है, ऐसे आत्मा में लीन होना है। आप समझ गए ना? इसलिए देखो नए चक्र में आपने लिखा है, आपने ध्यान दिया हो, वो तो शास्त्र की बात है, कि एक नए ऐसा होता है, बाकी के निश्चय नए तो दूसरों का निषेध करते हैं, लेकिन एक नए ऐसा होता है जिसका कोई निषेध नहीं करता है, और वो अन्य नए का निषेध करके और अपने विषय की वस्तु को बताकर स्वयं निषिद्ध हो जाता है। आता क्या नहीं आता, न्यायाधिराज जिसे कहते हैं, लिखा नहीं लिखा है क्या, स्वयं निषिद्ध हो जाता है। दैसनाचार्य में है और भी है, आप ख्याल है। इसका अर्थ यह है कि वो विकल्प, वो जो विकल्प थे वो आत्मा के स्वरूप के सीधे प्रतिपादक थे, तो उनका विकल्प का निषेध करना है कि जो उनने प्रतिपादन किया उसका भी निषेध करना है। देखो स्त्री पुत्र मेरे हैं, इसमें तो इस विकल्प का भी निषेध करना है और स्त्री पुत्र को अपना मानना भी छोड़ना है, लेकिन आत्मा शुद्ध है, इसमें इस विकल्प का निषेध करना है, आत्मा को शुद्ध मानना नहीं छोड़ना है। समझ गए ना, आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र है ये मानना नहीं छोड़ना है, इस विकल्प को निषेध करना है, ख्याल में आ गई ना बात। और उसमें स्त्री पुत्र वाले में तो उस वस्तु का विषय का भी निषेध करना है, इसमें विषय का निषेध नहीं करना है, इसमें अकेले विकल्प का निषेध करना है। और हम सब एक डंडे से हाँकते जा रहे हैं, जैसे स्त्री पुत्र मेरे नहीं है तो उनको भी अपन को निषेध करना है, तो मैं शुद्ध हूं इसका भी निषेध कर दिया। निर्विकल्प होने की ये विधि नहीं है। तो जो हमारे देशना नवदी में धारणा तक हम पहुंचे थे, देशना में तो धारणा तक ही पहुंचना है, वास्तव में देशना में तो आपको पहले क्या देशना का स्वरूप भी समझ लो कि जब गुरु अथवा कोई तीर्थंकर परमात्मा आपको समझा रहे हैं अथवा शास्त्र पढ़ के आप समझ रहे हैं, तो इस वक्त तो आपका सिर्फ इतना ही काम है बादनी जी कि मैं क्या कह रहा हूं बस वो आप अपने में समझ लें। अभी वो एवं तेद एवं साध नहीं करें, सच्ची के झूठी इस चक्कर में पड़े ना तो अगली बात निकल जाएगी, समझना। अभी अभी बराबर छाप मत लगाते जाना, एक एक गलत कही ये ठीक कही ये गलत कही ये थी, ऐसा 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 करने की जरूरत नहीं, पहले तो पीते जाओ, अपन मन में धारणा बैठा रखी ना कि मैं ये मानता हूं भानु कुमार जी, तो पंडित जी ने ये बहुत अच्छा उसके विरुद्ध आई थे, नहीं ये ठीक नहीं है, तो क्या अभी तो क्या कह रहा है ये समझो, फिर आपका कोठरी में जाके बैठ के नक्की करना कि सही कही के गलत कही, लेकिन इतना इतना याद रखना कि कोठरी में जाने के पहले याद रहे, भूल जाओगे तो काम खत्म हो जाएगा, विचार करने लग जाओगे तो अगली बात नहीं सुनोगे, समझ आई ना मेरी बात। उपदेश सुनते वक्त तक कितना काम करना पंडित जी, प्रैक्टिकल बात करता हूं आपसे, बाद में विचार करोगे तो अगला पॉइंट ख्याल में नहीं आएगा, और बिल्कुल वैसे रहोगे छोड़ दोगे तो जब विचार करने के लिए याद नहीं रहेगा क्या कहा था। आज तो सुविधा है कि टेप हो जाता, नहीं रहे तो दोबारा सुन लेना, लेकिन जब ज्यादा विचार में मत चल जाना, अभी आपके पास उसका अल्टरनेट तो है पार्नी जी, याद नहीं रहे तो दोबारा सुनने का, लेकिन विचार करने लग गए तो फिर अल्टरनेट नहीं रहेगा, सीधे मुख से सुनने में ज्यादा ख्याल में आता है, तो उसके जाकर फिर उसको यहा करना, उसके संबंध में विशेष जानने का प्रयत्न करना, यहां तो अवग्रह तक बात रहेगी ना, फिर जाकर किसी निश्चय पर पहुंचना बादनी जी, तो अभाय कहलाएगा, फिर उसको यदि निश्चय पर पहुंच जाओगे ये बात एकदम सही है तो फिर उसे धारणा करना, इतना काम इस 15 दिन के शिविर में कर लेना, और यदि वो इसके बाद का काम हो जाए तो इससे बहुत बढ़िया नहीं है, क्योंकि हमारी कोठरी भी कोई पवित्र हो जाएगी यहां, क्यों हमारी कोठरी भी कोई तीर्थ हो जाएगी, कर लो तो बहुत बढ़िया है, नहीं हो तो अपने गांव की कोठरी को तीर्थ बना देना, क्योंकि देशना लब्धि तक का यही तक काम है, बाकी तो कर्ण लब्धि का काम है, प्रायोग लब्धि बीच में आती है, वो परिपाक होगा योग्यता का, और उस परिपाक होने के बाद में कर्ण लब्धि आएगी और सम्मा दर्शन की प्राप्ति होगी, तो इस विधि से तेरे को सम्मा दर्शन की प्राप्ति हुई है बता, तो नहीं हुई है तो समझ लेना नहीं हुई, लेकिन अनादि से अज्ञानी ही है, मेरे इस गाथा का अर्थ कर रहा हूं किसी व्यक्तिगत बात नहीं है, हरेक की अपने सब की बात है जी, क्यों पादनी जी कि देशना लब्धि में अवग्रह या अवाय धारणा यहां से गुजरा है कि नहीं गुजरा है, तो उस पर गंभीरता से सम्यक निर्णय लिया है कि नहीं लिया है, फिर प्रायोग लब्धि में जो योग्यता का परिपाक होता है वो परिपाक हुआ है कि नहीं हुआ है, क्यों फिर वो कभी कर्ण लब्धि मारी है कि नहीं मारी है, है? उसका अंतर मुहूर्त काल है तो पहले अंतर मुहूर्त तक कभी स्थिर होके बैठा भी है भला आदमी जिंदगी में, याद तो कर हाँ मैं रात में रोजाना सोता हूँ स्थिर होकर के, सोने में नहीं होता सम्यक दर्शन, जागृत होकर के बुद्धि पूर्वक पुरुषार्थ पूर्वक, ये अबुद्धि पूर्वक होने वाली क्रिया नहीं है, समझ गए ना आप, कहें ना ये तो बुद्धि पूर्वक, इसकी जो विधि है वो बुद्धि पूर्वक वाली क्रिया है, कर्ण लब्धि भी अबुद्धि पूर्वक होती है क्या, क्यों तो कभी तूने जागृत अवस्था में ऐसा लगातार घड़ी दो घड़ी आत्मा के ही चिंतन में चला गया हो, ऐसा कभी हुआ है? जिंदगी में उठा के देखते हैं तो इन विकल्पों ही विकल्पों में उलझने के अलावा तो कुछ दिखता नहीं, और अभी भी बैठते हैं तो अभी तक कम विकल्प आ रहे हैं, और सामायिक के नाम पर बैठते हैं तो कितने आते हैं, से 10 गुने और 100 गुने आते हैं, करके देख लेना, करके सबने देखा है, क्योंकि सबको सबको भी प्रयोग करना है ना, तो सबने प्रयोग कर करके देखा है कि उसमें और कितने विकल्प जाल खड़े होते हैं, उससे अंदाज लगता है। धोखे में रखने से कोई फायदा नहीं है, समझे ना, क्योंकि देखो ये बात आप समझ लेना बहुत अच्छी तरह से कि सम्यक दर्शन यदि अपन को नहीं है और अपन ने सम्यक दृष्टि अपने को मान लिया, कहने की बात नहीं है, कहना तो मान के कारण होता है, मान लिया तो गारंटी से सम्यक दर्शन होने पर प्रतिबंध लग गया, अब होने के चांस नहीं है, समझ लेना। तो अच्छा अपन है तो भी क्या नुकसान है, अपन यही मान लो कि मिथ्या दृष्टि को फिर होने के चांस नहीं रहेंगे, अभी तो ऐसा संशय तेरे को खड़ा है तो तू क्यों संसार में मत रह के है कि नहीं है, नहीं है ये पक्की गारंटी है, समझ गए ना, वो होने वाले को संसार में थोड़ी खड़ा रहता है, नहीं होने वाले को ऐसा संशय तो होता है कि मुझे हो गया, लेकिन होने वाले को ऐसा संशय नहीं होता है कि मुझे है कि नहीं है, ये संशय खड़ा हुआ समझ लेना, वो था पहले तो अभी छूट गया, क्यों क्या समझ में आया ना। अरे भाई शास्त्र को जरा पढ़ के देखो तो तुमको एकदम पता चल जाएगा कि है कि नहीं है, कैसे उसके विकल्प होते हैं, कैसी उसकी भूमिका होती है, देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा कैसी होती है, सवाल थोड़ी किसी व्यक्ति के पक्ष का और विरोध का है ना, शास्त्र में एक 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 बात मैं कहूं आपको, उदाहरण के लिए नाम मामले नहीं लेता हूं, अमेरिका की बात है कि एक भाई बहुत बहुत इस तरह तत्व की चर्चा करते करते और ऐसे मेरे से बोलने लगे कि हमें सम्मान दर्शन क्यों नहीं होता है, आप हमको बताओ, तुमने सब प्रयत्न बहुत किया। मैंने उनसे कहा कि तुम सुन नहीं सकते हो इसलिए मैं तुमको ये बात नहीं बताऊंगा, क्या तो बहुत पीछे पड़े, बहुत पीछे पड़े। मैंने कहा मैं जानता हूं कि तुम में ये पात्रता नहीं है कि जो असली कारण है तुम्हारे सम्मान दर्शन नहीं होने का वो मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम सुन नहीं सकोगे, लास्ट ईयर की बात है, इस वर्ष तो मैं उस गांव गया ही नहीं, वो लोग तो मिले थे मुझे लेकिन मैं उस गांव नहीं गया, बहुत पीछे पड़े। मैंने कहा देखो मुझको कुछ नहीं है, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा इसलिए मैं नहीं कहना चाहता हूँ, तो मैं अगली साल तुमको बताऊंगा, तुम एक साल और अभ्यास करो। नहीं माने वो, बहुत पीछे पड़ गया था। मैं कहता हूँ तुम बहुत आग्रह करते हो, तो वो श्वेतांबर थे, अभी भी श्वेतांबर है, घबराना नहीं, मतलब कोई यहां वहां माथा मारने की कोशिश नहीं करना। मैंने कहा कि जब तक गीत मिथ्या तो नहीं छूटेगा तब तक किसी गारंटी से हो सकता नहीं। फिर उसने कहा क्या गीत मिथ्या, क्या गीत मिथ्या, कौन देव का स्वरूप क्या सही है, जिन प्रतिमा का स्वरूप क्या है, समझ गए ना आप, गुरु का सच्चा स्वरूप क्या है, कोई गुरु है कि उसकी बात नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट चित्र नहीं होगा और वो मर्यादा तुम्हारे जीवन में नहीं समझ में नहीं आ सकता था। वो सास में तो भूत पड़े तो परद्रव्य है और ऐसे तो कुछ होता नहीं है, वो सब सारे तर्क और कुंद कुंद में भी लिखा है कि भेद से नहीं होता है मोक्ष। अरे उसका मतलब ये नहीं है कि भेद से मोक्ष होता है, दिगंबर भेद के बिना मोक्ष हो जाएगा, तो दिगंबरों को भी दिगंबर भेद के कारण मोक्ष नहीं होगा, ये है उसका अर्थ, लेकिन वो भेद तो अनिवार्य है। ये कहा तो सचमुच उनके चेहरे जो मैंने कहा था ना कि तुम सुननी चाहोगे, मैंने कहा था ना तुमसे, नहीं 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 साहब ऐसी बात नहीं, हमने हमको कोई बुरा नहीं लगा, बिल्कुल नहीं, मतलब तो ठीक है, मैं जानता हूँ ऐसी बात नहीं है, तुमको नहीं लगा तो अच्छी बात है, लेकिन अभी जो तुमने मेरे सत्य सुन ही लिया है, चाहे पहले सुना हो चाहे बाद में सुना हो, लेकिन अब तुम इस पर गंभीरता से विचार करना, क्या समझे ना। तो वो बात तो मैंने उनसे कही थी, मैं ऐसे 10 साल के श्रोता है, ऐसे सोता है कि जैसे आप में से कोई नहीं है, नाराज मत हो ना, आपका अपमान नहीं करता हूँ, इतना अध्ययन करते हैं, इतने समर्पित हैं, इतने कि आप सोच नहीं सकते पादनी जी, जितना विनय श्वेतांबरों में दिगंबरों में तो उतनी विनय है ही नहीं, ख्याल में आया ना। तो आप लोगों ने देखा, आप तो आए हो वहां से, आपको पता होगा कि नहीं है, तो वो अपने साथ भी यही तकलीफ है, असली कारण बताएं तो हम सुन नहीं सकते, ऐसे हैं समझना क्यों नहीं होता, हमें समझना क्यों नहीं होता, हम तो बिल्कुल त्रिकालीन समझना भिन्न, एक आपके प्रदेश भेद से भी भिन्न, और वो आकार का भी नहीं, आपने छठवीं चौथी में गाथा मिलेगा वो भी नहीं, अब तो हमें हो जाएगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा कि बहुत मोटी भूल पड़ी है कि बता दो ना, कि बताऊंगा तो नहीं भैया तुम सुन नहीं सकोगे और झगड़ा हो जाएगा, इतने टुकड़ों में से एक आध टुकड़ा और हो जाएगा।
क्या
तो क्या करोगे कि भैया वो तो तुम्हें स्वयं ही समझना पड़ेगा। इनडायरेक्ट तो मैं रोज ही नहीं कहता हूँ, लेकिन डायरेक्ट नहीं कहूंगा।
तखत राज जी
रोजाना कहता हूँ ना कि चार परिभाषाएं हैं, प्रदीप जी भी रोजीना कहते हैं, बड़े दादा ने भी कहा था, मैं भी कहता हूँ कि सम्यक दर्शन की जो चार परिभाषाएं हैं वो चारों का होना अनिवार्य है। सम्यक दृष्टि को वो तो आएगा, इनका भी जब कोई विषय लिया है तो आगे सब आएगा, समझ गए ना। तो तुम एक परिभाषा में तो खूब वजन दे रहे हो, बाकी परिभाषाओं की तरफ देख नहीं रहे हो कि देव सास गुरु की श्रद्धा में गड़बड़ नहीं चल रही हो, कि सात तत्व की श्रद्धा में गड़बड़ नहीं चल रही हो, वो आत्मा के अनुभव में जैसे भिन्न सब हो गया, ख्याल में आया कि नहीं आया। सात तत्व के श्रद्धान का भी विचार करते हैं खूब गंभीरता से, आसव को हे मानना, पुण्य को उपाधेय नहीं मान लेना, उनमें तो सब चलता है, लेकिन बाकी की जो और परिभाषाएं हैं कौन सी, कि एक तो वो देवसास गुरु की श्रद्धा वाली और एक सम्यक दर्शन के पहले जो हमारे जीवन में आवश्यक आचरण होना चाहिए सप्त दर्शन का त्याग वो वाली, इन दो में कहीं गड़बड़ है खोज लेना। इनडायरेक्ट तो कहता हूं मैं, अब डायरेक्ट मैं नहीं कहता हूं क्योंकि अब मुझे जितने टुकड़े हैं यही बहुत हैं।
नंदनलाल जी चार परिभाषाएं हैं ना, एक आत्मा के अनुभव की, एक सात तत्वार सिद्धांत की, एक सच्चे देव सास गुरु की श्रद्धा की और एक आवश्यक पात्रता सात दर्शन के त्याग की, इस भाषा में समझ लो आप।
तो जी ना ऐसे अखबारों में पढ़ते हैं सुनते हैं, इस मुंशी के घर पे छापा पड़ा तो नकली दवाइयां बन रही थी, ये हो रहा था किसी को, क्या अब महीनों महीनों आत्मा की बात कर रहे हैं बैठे हैं समय समय, कहां हुए बड़ा प्रतिबंध तो लग रहा है वहां पर, कैसे कैसे काम तो कर रहे हैं, है ना, अपना टेंट नहीं दिखता है, दूसरे की फुली दिखने को फिरती है, कैसे कैसे रोजी ना आते हैं, एक इसका सुन रहे हैं, इसका इसका सुन रहे हैं, इसका उसका ऐसा हो रहा था, उसके जे हो रहे थे, क्या कहीं मांस मदरा की दुकानें थी, कहीं आलू हो रहा था, कहीं चर्बी बिक रही थी, कहीं ये हो रही थी, क्या हो रहा है, क्या है? जिनकी खुल गई जिनकी नहीं खुली भगवान जाने कैसा क्या है, सबको खोलेंगे। गड़बड़ कहीं दूसरी जगह है, वो शोध रहा है इसमें, अब इसमें कहां है। ये दो बातें तो गुरुदेव ने इतनी धुनाई की है, कौन कौन सी, सात तत्व की भूल संबंधी, और मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी आया है, क्यों कि आश्रम तत्व को संबंध में संबर में नहीं मिला लेना, संबर को आश्रम में नहीं मिला लेना, उनको हे मोपादे नहीं मान लेना, तो उनकी तो हमने बाल की खाल खींच के रख दी है, अब उनमें तो कहीं गलती कोई रह नहीं सकती है, क्यों एक तत्व को दूसरे तत्व में नहीं मिला देने का प्रसन्न कुमार जी ए? और दूसरा वो त्रिकाली दुर्ग भगवान आत्मा में तो केवल ज्ञान और नवन क्या क्या निकाल के हमने बाहर फेंक दिया है, वो भी बिल्कुल शुद्ध हो गया है आत्मा, अब वहां भी कोई गुंजाइश और कुछ ज्यादा निकालने की नहीं रही है, तुम चाहो तो 10-20 गुण और निकाल के फेंक दो। गुण फेंक तो निकाल ही दिया है। लेकिन ऐसा मत करना कि फूफा में ही फूफा रह गया, नहीं तर वो और ज्यादा हो जाए।
सुना के नहीं तखता जी, फूफा में फूफा की बात नहीं सुनी, सुनने जैसी है, तो
मरम की बात है कि एक सुनार था, उसकी पत्नी थी, बाल बच्चे कोई थे नहीं, अब सुनार का हो गया स्वर्गवास, तो बेचारी अकेली रह गई विधवा, तो उसके साले बहुत, दो चार साले थे, उनके लड़के लड़कियां थे, तो सब आ गए, भुआ जी भुआ जी भुआ जी भुआ जी, तो अभी तक तो कोई नहीं आता था, अब भुआ जी अकेली और माल बहुत है भुआ जी के पास, तो सारे सालों के लड़के चक्कर काटने लगे, और वो बोले कि भुआ जी हमको तो फूफा बोलते हैं, आपके क्या बोलते, फैबा बोलते, जो भी आप समझ लेना, समझे ना, कि फूफा जी के बिना तो हम रह नहीं सकते हैं, हमें तो उनके बिना एक मिनट अच्छा नहीं लगता है, तो बेटा क्या करें, अब तो चले गए, कर क्या सकते हैं, कि एक हो सकता है कि जब सीता जी चली गई थी ना वन में और रामचंद्र जी को यज्ञ करना था, तो उन्होंने सोने की सीता बना करके बगल में बैठाई थी, है मालूम आपको, सोने की सीता बनाई थी, बिल्कुल सीता के आकार का पूरा सोना, इतनी सी सीता नहीं, पूरे सीता के बराबर सीता, और फिर हवन यज्ञ किया था रामचंद्र जी ने, तो अपने घरे सोना हो गए तो ये सोने का फूफा बना ले, क्योंकि फूफा की अंदर गड़ा था ना जमीन में सोना, दूसरों के गहने बना बना कर चुरा चुरा के बहुत ढेर इकट्ठा किया था, वो निकलवाना था उनको, सारा सोना निकल के हाथ में आवे, निकले कैसे, बुआ दाब के बैठी है,
कि बेटा ये बात तो अच्छी है, उसने सोचा कि वो सारा सोना अब गहने बनाने का तो जमाना नहीं रहा, विधवा हो गई पहनूंगी नहीं, तो सारा गहने महने तोड़ के और जो भी था घर का सारा सोना निकाल के फूफा बन जाए, विराजमान रहेगा मंदिर में, देखा अपने एक उसमें दर्शन करेंगे, सुरक्षा भी, पूरा सोना भी सुरक्षित। बुआ को एक प्रस्ताव समझ में आ गया कि बेटा ठीक है, तो सारा सोना इकट्ठा किया और एक भतीजे ने फूफा बनाया, तो उसमें से जो वो करता है ना कोई गहना बना है और पूरा का पूरा सोना रह जाए तो वो सोनी नहीं, क्यों, तो उसने करीब 25% सोना पार कर दिया और फूफा बना करके बुआ को दे दिया कि देखो तेरा फूफा मैंने बढ़िया बना दिया, उसने अपना काम कर लिया। अब दूसरा भतीजा आया कि अरे फूफा की ऐसी नाक थी, कितनी धमपोला नाक बना दिया, जते नहीं, ये क्या उससे बनवाया तुमने, मैं बनाऊंगा बढ़िया फूफा, तो वो ले गया, उसने द्वारा गलाया और गला के द्वारा फूफा बनाया, तो 25% मार से खाया हो गया। तो तीसरा आया, चारों ने बनाया तो 1/4 रह गया, 5 किलो के फूफा 1/4 किलो के रह गए। अब पहला फिर आया, हुआ ये कैसा बिगड़वा दिया तूने, मैं द्वारा बनाऊंगा, अब वह घबरा हुआ कि ये तो गया फूफा, सोने का फूफा भी गया, असली फूफा भी गया, असली फूफा आग में जल गया, तो 4 दफे सोने का फूफा आग में जल गया और गल गया। तब हाथ जोड़ के बोली के बेटा रहने दो, अब क्या रहा है, अब तो फूफा में ही फूफा रह गया है, अब ज्यादा गुंजाइश है नहीं, तो मेरे कहने का मतलब त्रिकाली धर्म से बहुत निकाला है माल तुमने, अब रहने दो, अब तो फूफा में ही फूफा रह गया है, नहीं तुम और कुछ निकाल निकाल के कोई पर्याय रहना जाए, इसमें से गुड़ भी मत निकाल देना, प्रदेश भी मत निकाल देना। मेरे कहने का मतलब है उसकी दृष्टि के विषय में से पर्याय के निकालने की धुलाई तो बहुत हो चुकी है, और 7 तत्वों के परस्पर भूल की चर्चा भी बहुत हो चुकी है, अब कोई आश्रम को संबर में नहीं मिलाता है, कोई पुण्य को मोक्ष का कारण एक भी मुमुक्षु नहीं मानता है, अब थोड़ा अपने आचरण की तरफ हम देखें, क्यों, ख्याल में आया कि नहीं आया, और थोड़ा हम उसकी तरफ भी देखें, वो चौथा क्या है, देव शास्त्र गुरु के स्वरूप के बारे में सम्यक निर्णय करें बिना किसी व्यक्ति को ध्यान में रखे, क्योंकि वो व्यक्ति ध्यान में आते ही हमारी कसौटी ढीली पड़ने लगती है, क्योंकि इस कसौटी पर तो फला आना आदमी तो आएगा नहीं, तो इसलिए ये जरा ढीली वो आ जाए, सम्यक दृष्टि का स्वरूप भी समझने की कोशिश करें बिना किसी व्यक्ति को ध्यान में रखे, गुरुदेव को भी ध्यान में रखे बिना, क्यों कि गुरुदेव को ध्यान में रखोगे तो ये मानूंगा तो ये तो गुरुदेव पे घटित नहीं होगा, तो कहीं गुरुदेव मिथ्या दृष्टि सिद्ध ना हो जाए, इस डर के मारे तू सच्चा निर्णय नहीं कर पाएगा, घबराना नहीं, गुरुदेव सच्चे सम्यक दृष्टि थे तो सच्चा निर्णय तेरे को होगा, तो गुरुदेव तो उस कसौटी में आएंगे ही, लेकिन पहले से माथे पे बोझा मत रखना, तो तू सच्चा निर्णय नहीं कर पाएगा, मेरा मतलब समझ गए ना आप, बोझा नहीं रखने के लिए कह रहा हूं, कोई जो भी सच्चा सम्यक दृष्टि धर्मात्मा होगा वो तेरा सच्ची जो कसौटी बनेगी वो उसमें आएगा आएगा और आएगा, उनकी चिंता तू मत कर, तू बिल्कुल चिंता छोड़कर सम्यक दृष्टि का स्वरूप 14 गुणस्थान समझ ले, 4th गुणस्थान का स्वरूप समझ ले, यशपाल जी समझाते हैं, समझ ले 14 गुणस्थान का स्वरूप, सच्चा स्वरूप कि इसमें क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, तो तेरे काम आएगा कि अरे तेरे में ऐसी बात तो नहीं है और ऐसी बात और सम्मेलन कैसे होएगा, इसलिए इस विवेक पूर्वक आचार्य कहते भाई ये बात भी हमारी सच्ची है कि आत्मा ज्ञान कई घन पिंड है, ज्ञान से ही बना है, और ये बात भी सच्ची है कि अनादि से अज्ञानी है, क्योंकि सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति तो स्वयं बुद्धत्व या बोधित बुद्धत्व पूर्वक होती है, और ये बात अमृतचंद्र की टीका में है, फिर उन्होंने कलश में भी ली है, कई दफे दोहराई है, अमृतचंद्र जैसा आध्यात्मिक कोई दूसरा नहीं था, इसलिए इस बात को हमको गहराई से ध्यान देना चाहिए।